मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। दोस्तों मुख्य विषय के तहत तो फिलहाल हम लोग उत्तर लेखन पर बात कर रहे हैं और आप लोग इस विषय पर जितनी ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं उतनी ही और ज्यादा मैं अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करने लगा हूं। लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। देखते हैं आज जो भी वक्त मिलेगा इस पर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ जो दूसरे मुझे आप यूं कह लीजिए कि जो आप गाइडेंस देनी है उनके बारे में आइए देख लेते हैं। राष्ट्रपति जी का राष्ट्र के नाम संदेश आपने सुना होगा, अखबारों में शायद पढ़ा भी हो और हो सकता है कि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया हो। निश्चित तौर पर जब हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सोचने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण के आधार पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आज तक नहीं पूछा गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आपको इसे सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं। मैं कहूंगा कि नहीं, इसे सुनना चाहिए, क्योंकि मैं इस विचार को लेकर के नहीं आगे चल पाता कि केवल वही बातें पढ़ी जाएं, सुनी जाएं, देखी जाएं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। मुझे लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं हमें उनसे भी संबंध रखना चाहिए, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी आंसर राइटिंग में हमारी बहुत मदद करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस विषय पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि उत्तर कैसे लिखें, विचार कैसे करें, उसमें तो उसकी बहुत ज्यादा मदद होती ही है। जब मेरे पास कंटेंट नहीं रहेंगे तो मैं विचार कैसे करूंगा। लेकिन फिर भी जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की जो बात है उसका मुख्य बिंदु यह है कि वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक हैं। तो निश्चित तौर पर वो अपने अभिभाषण में अपने मन से ज्यादा उनकी बात करेंगी जो राष्ट्र से जुड़ी हुई है। वो अपने घर की बात नहीं कर रही, अपने देश की बात कर रही है। तो इस अभिभाषण से आपको ये पता चलेगा कि नहीं, हमारी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, हमारी क्या क्या समस्याएं हैं और हमें कैसे उन समस्याओं का मुकाबला करना है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि सिविल सर्विस का जो करंट अफेयर्स होता है उसके लिए वो एक प्रकार से मार्ग दिखा रही हैं, राजमार्ग का निर्माण कर रही हैं, इसी हाईवे पर आपको अपनी यात्रा करनी है। इस लिहाज से आप उनके इस अभिभाषण को पढ़ें, सुनना चाहें तो सुने, इससे आपको एक दृष्टिबोध होगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों हमारे मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, आप जानते हैं, इस पर हम लोगों ने थोड़ी सी बात भी की थी। राष्ट्रीय सहारा में इस पर एक एडिटोरियल कमेंट्स भी आया है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। बहुत ज्यादा जानकारी के लिए तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी तो फिर होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर मिस्र देश के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि रहे गणतंत्र दिवस पर तो हमें बिल्कुल ही तो उसे इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, उसे मतलब भारत और मिस्र के जो संबंध हैं उनको। एडिटोरियल कमेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से मुझे मिस्र हमेशा याद रहता है वो ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, जो टीटो थे जोसेफ टीटो यूगोस्लाविया के थे और जो मिस्टर नासिर थे वो मिस्र के थे। इन तीनों नेताओं को जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका स्तंभ माना जाता है। जब भी आप गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो इन तीन देशों के तीन नेताओं के नाम उसमें जरूर आएंगे। तो मिस्र को तो मैं इस रूप में जानता हूं, तो सीधी सी बात है कि चूंकि भारत भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का न केवल फाउंडर रहा है बल्कि वो तो बहुत बड़े समय तक उसका नेतृत्व भी करता रहा है, तो मिस्र के संबंध तो हमारे साथ बेहतर होंगे ही होंगे, एक अनुमान लगाया जा सकता है, और डेफिनेटली वो है भी। अभी भी जब राष्ट्रपति वहां के आए तो बकायदे 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो हमारे रणनीतिक साझेदार हैं, यानी कि डिफेंस, और खासकर मिस्र ने भारत के जो रक्षा उपकरण तैयार हो रहे हैं उनमें बहुत रुचि दिखाई है। और आप जानते हैं कि रक्षा क्षेत्र को भारत कितना आगे बढ़ा रहा है, यानी बहुत ज्यादा हम इसको आगे ले जा रहे हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर है और उस पर एडिटोरियल कमेंट भी आपको राष्ट्रीय सहारा का पढ़ने को मिलेगा, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ हैं, मैं देख रहा हूं कि इनकी जो अप्रोच है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की अप्रोच है और बहुत सराहनीय और बहुत अभिनंदनीय अप्रोच है, और साथ ही साथ बहुत ही ग्रास रूट लेवल की अप्रोच है। वो हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और केवल समझते ही नहीं है बल्कि उसके लिए वो क्या कर सकते हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो कर भी रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने घोषणा की है, शुरुआत भी शायद हो गई है, कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो निर्णय हैं, जो उनके फैसले हैं, वो अब बकायदे भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे। किन भारतीय भाषाओं में? सीधी सी बात है कि जो हमारे संविधान में दर्ज हैं उन भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे। एक परियोजना चालू की गई है, उस परियोजना का नाम है E-SCR परियोजना, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, SC सुप्रीम कोर्ट, R मींस रिपोर्ट। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अभी तक जो डिसीजंस हुए हैं उन डिसीजंस को इलेक्ट्रॉनिकली दूसरी भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी भाषाएं कौन से हैं जो हमारे संविधान की 8वीं सूची में दर्ज हैं? ठीक है, एक आंकड़ा आपको और पढ़ने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे लगभग 35,000 डिसीजंस हैं, 35,000 डिसीजंस। तो ठीक है, 35,000 डिसीजंस सोचिए कि रीजनल लैंग्वेजेस में हमें मिल जाएंगे और वो भी मुफ्त निःशुल्क, एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं भारत के संदर्भ में तो बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि न्यायालय की भाषा के बारे में भारत हमेशा परेशान रहा है। जब हम मध्यकाल में देखते हैं तो उर्दू और अरबी हमारी न्यायालय की भाषा थी, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी हमारे न्यायालय की भाषा हो गई, इसके बाद जब हम आजाद हुए तो मुख्य भाषा तो हमारे न्यायालय की, न्याय की कह लीजिए, अंग्रेजी ही रही। अब उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले मुझे ध्यान आ रहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी कुछ इस तरह की घोषणा की है कि जो नॉन टेक्निकल जो पोस्ट हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन होंगे, अंग्रेजी में तो अब तक होते ही थे, उन्होंने 13 भारतीय भाषाओं में भी परीक्षाएं आयोजित करने की घोषणा की है। ये बहुत बड़ा कदम है। मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लगातार कोशिश हो रही है, शुरू भी हो गई है कि ये हिंदी में और दूसरी भाषाओं में कराई जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टूवर्ड्स द रियल लिबरेशन ऑफ इंडियन साइकी, मतलब जो भारतीय चेतना है, भारतीय चेतना की वास्तविक उन्मुक्ति की दिशा में उठाए गए ये बहुत बड़े कदम है। क्योंकि यदि भाषा आप दूसरे देश की ला देंगे तो हम कभी भी अपनी चेतना को उन्मुक्त नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह के अप्रोच के साथ मुझे लगता है कि आप इन घटनाओं को देख सकते हैं और आंसर राइटिंग में और निबंध लेखन में ये जो लेटेस्ट जो आपको मैंने अभी बातें की हैं आपकी बहुत मददगार हो सकती हैं। दोस्तों अब हम आते हैं मुख्य विषय पर और वो है कि विचार कैसे करें, सोचे कैसे। आपको ध्यान होगा कि पिछले अपने डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने मूलभूत विषयों की बात की थी, जो हम खासकर 10th तक जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वे इनफेक्ट हमारे लिए जमीन की तैयारी करते हैं, उस जमीन की तैयारी जिस पर हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। और याद रखिए कि केवल जमीन की ही तैयारी नहीं करते बल्कि हमें एक प्रकार से बीज भी उपलब्ध कराते हैं। देखिए जब हम जमीन की बात करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा दिमाग है, हम सोच समझ सकते हैं, बुद्धि ठीक है, ब्रेन है, उसमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो जमीन तैयार है। लेकिन नहीं, ये जो विषय है हमारी, ये विषय हमारे लिए बीज का भी काम करते हैं। अब आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अगर आप साइंस को हटा दें, फिलहाल हम साइंस को किनारे कर देते हैं क्योंकि सिविल सर्विस में अब जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं वो थोड़े हायर किस्म के साइंस हैं। हालांकि ये बात 10वीं तक के अगर साइंस को किताबें उठा करके देखी जाएं तो शायद उतनी सही नहीं होंगी क्योंकि 10वीं तक ये साइंस के ये हिस्से भी पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं। तो आप देखें कि जो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस है उस सिलेबस का मोर देन 50% 60-70% जो भाग है वो केवल चार विषयों का है। आप इन चार विषयों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन चार विषयों की जानकारी किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास होनी चाहिए? जब मैं कहता हूं कि जानकारी किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास होनी चाहिए तो मुश्किल यह है कि इस जानकारी को सिर्फ जानकारी के रूप में लिया जाता है और यह हमारे एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी खामी है, दोष ही मैं कहूंगा, क्योंकि हमने कभी भी इन विषयों को सच पूछिए तो अपनी जिंदगी से जोड़कर देखने के तरीके नहीं बताए कि नहीं ये विषय नहीं है, ये किताबों की ही चीजें नहीं है। ऐसा नहीं कि ये विषय केवल आपको सर्टिफिकेट दिला देती है पास होने का, नहीं, ये जो विषय है आपको सोचने और समझने की दृष्टि प्रदान करती है। जी हाँ, ये दृष्टि प्रदान करती है, आपके दिमाग का जो ओरिएंटेशन है उसको वो साइंटिफिक टर्न दे देती है, उसे वो एक वैज्ञानिक मोड़ देती हैं। अब होता क्या है कि सामान्य तौर पर जो व्यक्ति इतने पढ़े लिखे नहीं होते, या यूं कह लीजिए कि पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन इन विषयों को जिंदगी से जोड़कर नहीं देख पाते, तो उनके दिमाग का जो झुकाव होता है या कह लीजिए जो ढलान होती है वो एक तरफा होती है, और ये ढलान हमारा समाज बना देता है। अब आप देखिए कि समाज में बहुत सी चीजें ना, समाज में परंपराएं हैं, समाज में नैतिकता है, धर्म है, कानून है, जो भी हम आसपास के वातावरण से देखते समझते सीखते हैं उससे हमारे दिमाग का जो एक रुझान है वो डेवलप हो जाता है, और फिर जब हम किसी बात पर विचार करते हैं तो हमारे सारे विचार इस रुझान के अनुकूल होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई भी चीज अगर आप ढलान पर डाल दें तो उस ढलान की तरफ ही वो चीज जाएगी। तो जब हमारे सामने कोई भी समस्या आती है, किसी भी विषय पर बात करने के लिए हमसे कहा जाता है, तो हम उस ढलान के अनुकूल ही काम करने लगते हैं जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी है। ये जो विषय हैं जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं, ये उस ढलान के विपरीत नहीं जाते बल्कि उस ढलान को बेहतर बनाते हैं। उनको मालूम है कि कहां कितनी ढलान होनी चाहिए, या हो सकता है कि बहुत से ऐसी बातें हों कि वो बिल्कुल ढलान के विपरीत जाकर के अपनी एक नई ढलान तैयार कर रहे हों। यस, ऐसा भी होता है। लेकिन क्या हम बिना इन विषयों को जाने अपने मस्तिष्क के रुझान के विपरीत ढलान तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी चुनौती है, और यही तो सच पूछे तो सही मायने में एक विचारशील या विवेकवान व्यक्ति और पढ़ा लिखा लेकिन विवेकवान नहीं व्यक्ति में अंतर होता है। इस पर दोस्तों हम लोग आगे भी बातें करेंगे। तो आज मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। प्रिंस कुमार औरंगाबाद बिहार से, सपना थांगे करंदी महाराष्ट्र से, सौरभ प्रताप दिल्ली से, सत्येंद्र प्रयागराज से, आशुतोष जायसवाल चंदौली से, रोशनी शुक्ला और रोली वर्मा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।